ऑनलाइन बेटा सबको गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग
बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, बहुत बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, खुश रहो बेटा, खुश रहो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग सर,
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग सर,
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छी सबको, गुड इवनिंग, जितने मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन चीते हैं सबको गुड इवनिंग, शिकारी चीते जिनका शिकार कोई ना कोई वैकेंसी होगी, कुछ शिकार तो आए ही है ना, अभी 50-60 शायद एमपी में शिकार करने का मौका है आप सबके पास, हंटिंग का, सबको गुड इवनिंग। टुडे इज 27th दिसंबर 2021, बस जाने वाला है ये साल और लास्ट क्लास होगी आज, इसके बाद हम लोग 4th ऑफ द जनवरी को रिमेनिंग क्लासेस कंटिन्यूएशन में रखेंगे, जो एमपी लैंड लॉ की बची हुई और अकोमोडेशन वो सब कंप्लीट करके फिर हम लोग अपने रूटीन वर्क में आएंगे, अभी हम लोग रूटीन वर्क में नहीं है। अगेन गुड इवनिंग, आई एम अमित सर, विद मी अंकित सर, ऑन बिहाफ ऑफ दिस अमितला इंस्टीट्यूट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ स्पेशल लेक्चर ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 विच वॉज कमेंस्ड फ्रॉम 2 अक्टूबर 1959। ऑन कर रहे हैं ना सबको, लखनऊ शहर में रिंग रोड के साइड में एक अजब सा तमाशा देखा जा रहा है, लिपॉर्ड बोलते हैं ना तेंदुओं को, लिपॉर्ड ना, एक लेपर्ड आया हुआ, एक है कि तीन है, लोग बता रहे हैं एमबीबीएस है, मियां बीवी बच्चे समेत आ गया है, तो विंटर वेकेशन है, बड़े शहरों में लोग घूमने आते हैं। मैंने कहा ही था आप सबसे कि तमाम आपको एक गाड़ियां दिखेंगी जिस साहब लोगों की न्यायाधीश न्यायाधीश शहर में घूमते हैं, आप चले जाइए इस समय, बहुत गाड़ियां दिखेंगी, तो भी लखनऊ शहर में घूमने आए हैं, ऐसे ही जानवरों का भी क्या है, राइट है कि लखनऊ शहर को घूमें, देखें, अपनाएं। कई तो उस डर के मारे भी नहीं आए हैं आज, लेपर्ड है ना बेटा, जानकीपुरम वाले भी नहीं आए हैं, हाँ है हो बेटा, आई हो, ठीक है ना सब वहां, कोई कुछ लोग कहते जानकीपुरम में पकड़ा गया, बाद में बोला वो भी फेक है, पकड़ा नहीं गया ना, ओ माई गॉड, तो यानी वो कहीं भी हो सकता है,
जो कल के मतलब अपडेट है वो तो हमारे घर के सामने ही वाले घर के सामने घूम रहा
था, और तुम चली आई हम तो ओरली शेर हैं बेटा तुमको नहीं लगता तुमने मूर्खता किया है, है? देखो एक बार तुम लोग को बताए थे, कॉन्फिडेंस होता और एक समझ गए ना, ये क्लास ऑनलाइन भी कर सकती, वैसे सुना है कि वो रात में निकलता है, मगर किस जानकीपुरम में, कहीं उधर तो नहीं रहती, एकेटीयू साइड में, आप एकेटीयू कहाँ है उधर, जा जंगल साइड है,
हाँ
अच्छा जो भी हो वो ऐसी जगह हो, टेढ़ी पुलिया आ गया, अच्छा टेढ़ी पुलिया को वही सीधा करेगा हमें लग रहा है पता नहीं क्यों टेढ़ी है वो पुलिया, आज तक सीधी नहीं हुई हमें, आज तक नहीं, खैर चलो इस हास्यास्पद अप्रोच के साथ, क्लास में एक आध शेरनिया भी हैं जो लेपर्ड से नहीं डरती, ठीक है, कल बहुत भय था, परसों भी भय था, कई लोगों ने कहा इधर भी आ सकता है, भाई भाई उसकी मर्जी है, वो तो कोई ऐसा तो है नहीं उसके ऊपर कोई लॉकडाउन लगेगा, इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रूल्स एंड, और प्रॉब्लम इसकी हम लोग उसको मार भी क्योंकि वाइल्ड लाइफ वो तो मेरे ख्याल से, वो तो मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स में है शायद, दे आर इन फिंगर्स, इतने ही हैं, उनको बचाना सरकार की जिम्मेदारी है और इंसान को कम करना सरकार का प्रयास है। तो खैर अभी ओमिक्रॉन या आमिर खान जो भी कहें बहुत दूर हैं, उसके पहले ही दस्तक लखनऊ में लेपर्ड तेंदुआ आ चुका है, अभी हमें कल बताया गया पकड़ गया, हम घूम रहे थे हाँ कल्याणपुर पूरा घूम के आए रात में।
नहीं सर, अभी तो गाड़ियां वगैरह जो वाइल्ड
हाँ
घूम रही है।
अच्छा तो चलिए हम लोग मध्य प्रदेश की अब बातें करें, इस लखनऊ से अभी चल रहा लखनऊ में वो सीन, अभी पकड़ने की बात चल रही है, तो पहले जिंदा पकड़ने का ही प्रयास रहता है वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि अभी उसने किसी को घायल तो किया है मगर शायद किसी को मतलब अभी अपना वो नहीं फीड नहीं किया है, जिस दिन कर लेगा उसी दिन फिर वो तो मारने की भी सोच लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या नरभक्षी मैन ईटर हो जाए ना, तो अभी मैन ईटर नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू LRC हम लोग पढ़ रहे हैं MP का, और कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े थे, सबसे पहले रेवेन्यू का सिस्टम समझे थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वन चेयरमैन ये प्रिंसिपल जो भी जज, और दो या दो से अधिक, ग्वालियर में इसकी सीट है मैंने कहा तो देखिएगा। फिर आपने 11 में देखा रेवेन्यू ऑफिसर्स की पूरी हायरार्की ना, टॉप टू बॉटम कैसे होंगे वो हम लोग देखा, एक 13A या क्या है 14A में किसी में एक नया क्रिएटेड है प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी ना, प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी एक न्यूली क्रिएटेड हाँ कमिश्नर शायद ना हाँ, वो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा और सब देखा, फंक्शनिंग देखी, अपील वगैरह देखा, ये सब देखने के बाद हम लोग 9th chapter पे आके थमे थे, और पटेल सर्किल वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 9th chapter स्टार्ट करना है तो 9th chapter में आ जाइए अंकित सर, स्टार्ट कर दीजिए, लेट अस स्टार्ट विद द 9th chapter 104 पे आ जाइए।
चैप्टर 9 लैंड रिकॉर्ड्स।
अच्छा देखिए 9 है लैंड रिकॉर्ड्स, आप सबको जिन्होंने मुझसे लैंड रेवेन्यू पढ़ा उत्तर प्रदेश का लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में पूरा मालूम है, हम लोगों ने 3 टाइप के लैंड रिकॉर्ड देखे थे, 2 थे खसरा और दूसरा खतौनी, और एक किसान बही, किसान पासबुक सेक्शन 41 ऑफ UP LRC। उसी तरह यहां पे भी है, यहां पर क्या होगा एक भू अभिलेख होगा किसान बही टाइप का, बाकी रिकॉर्ड ऑफ राइट वही है और फील्ड बुक फील्ड मैप वही है खसरा। तो वो हम लोग का काम क्या है कि इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में चेंजेस कौन करेगा, कोई भी क्लेरिकल मिस्टेक है या म्यूटेशन है तो हु हैज अ राइट, हु हैज अ पावर टू डू, वेदर कलेक्टर, वेदर तहसीलदार, वेदर SDO, इसी को हम लोग को देखना है और ये हमारे एग्जाम का मेन क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए।
सेक्शन 104 फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हेल्प्स इन नॉन अर्बन एरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी एंड नगर सर्वेक्षक।
अच्छा हल्क पे हम लोग रुक गए थे हाँ, हल्क हल्क पटवारी हल्क ठीक है बताओ।
सब सेक्शन 1 द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स शैल फॉर ईच तहसील अरेंज द विलेजेस इनटू पटवारी हल्क्स एंड डिवाइड ईच अर्बन एरिया इनटू सेक्टर्स एंड मे एट एनी टाइम आफ्टर द लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पटवारी हल्क्स और सेक्टर्स एंड मे क्रिएट न्यू पटवारी हल्क्स और सेक्टर्स और एबॉलिश एग्जिस्टिंग पटवारी हल्क्स और सेक्टर।
अच्छा कौन पटवारी हल्क बनाता है देखिए
कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड
अंडरलाइन कर लिए, यही क्वेश्चन आएगा हु हैज अ पावर टू क्रिएट द न्यू पटवारी हल्क, उसमें होगा कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ द एरिया, तो देख लीजिए पहली लाइन यही थी ना द कमिश्नर, अंडरलाइन कर लीजिए प्रिलिमिनरी में यही क्वेश्चन आप भी कर लीजिएगा ठीक है, और चलिए बाकी छोड़ दीजिए
नहीं है,
है अच्छा है।
सब सेक्शन 2 द कलेक्टर शैल अपॉइंट अ पटवारी टू ईच पटवारी हल्क एंड अ नगर सर्वेक्षण सर्वेक्षक टू ईच सेक्टर फॉर मेंटेनिंग करेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स एंड फॉर such other duties as may be prescribed. तो कलेक्टर किसको पटवारी को अपॉइंट करेगा और नगर सर्वेक्षक किसको भी अंडरलाइन करेंगे।
पटवारी हल्क बनाने का कमिश्नर का काम है और उसमें पटवारी को अपॉइंट करने का काम किसका है? कलेक्टर का। अच्छा, पटवारी नाम की संस्था उत्तर प्रदेश में थी जिसको हटा दिया गया था, हमने बताया था ना, एबॉलिश कर दिया गया, पटवारी का नाम चेंज कर दिया गया, कानून गो उसको रख दिया गया, यानी पटवारी का नाम यहां से हटा के उसको क्या नाम रख दिया गया? कानून गो। मगर वहां अभी भी पटवारी है, पटवारी हैज अ टोटल नॉलेज रिगार्डिंग लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, और चलिए
फिर है सेक्शन 106 पे निशान लगाइए। एक सौ पांच को भी जो है निशान लगा लीजिए उस खाली प्री के लिए। द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड शैल अरेंज द पटवारी हल्क इन अ तहसील इन टू रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल्स एंड मे एट एनी टाइम ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी सर्किल एंड मे क्रिएट न्यू सर्किल्स और अबॉलिश एग्जिस्टिंग सर्किल्स।
ठीक है,
तो हु मे क्रिएट करके आ सकता है?
वो तो वही कमिश्नर,
इसमें 2018 का अमेंडमेंट है,
2018 का। ठीक है, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। हाँ,
फिर 106 है, 106 अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर इन अर्बन एरियाज। द कलेक्टर मे अपॉइंट इन ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।
कुल मिलाकर अपॉइंटमेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह का कौन कर रहा है? कलेक्टर। और सर्किल बनाने का काम किसका है? कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। अगर इतना याद है तो ये क्वेश्चन सारे आप इसको कर ले जाएंगे, यानी एक एक लाइन पे कहीं सिनॉप्सिस नोट्स बना लीजिए या उसी पे लिख लीजिए कहीं, पटेल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन सब को अपॉइंटमेंट देने का काम जिला कलेक्टर का। और चलिए
मैप्स ऑफ विलेज आबादी ब्लॉक इंस्पेक्टर। अब सेक्शन 108 पे आ जाइए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स।
रिकॉर्ड ऑफ राइट मैंने खतौनी ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट मींस खतौनी। हाँ,
सब सेक्शन 1, ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड फॉर एवरी विलेज एरिया एंड फॉर ईच सेक्टर ऑफ एवरी अर्बन एरिया एंड सच रिकॉर्ड शैल इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये प्री एज वेल एज मेन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ए, द नेम ऑफ ऑल भूमि स्वामीज together with survey numbers or plot numbers held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation in case of land used for agriculture. B, the names of all government leases and such classes of leases as may be specified by the state government together with survey numbers और प्लॉट नंबर्स हेल्ड बाय देम एंड परपोजेस फॉर विच दे आर बीइंग यूज्ड एंड देयर एरिया एंड स्टेटस ऑफ इरिगेशन इन केस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सी, द नेम्स ऑफ ऑल पर्संस ऑक्युपाइंग द आबादी ऑफ द विलेज और इन अर्बन एरिया ऑल पर्संस ऑक्युपाइंग द लैंड विच वॉज आबादी of a village before the constitution of such urban area as the case may be, along with the nature of their interest in land, plot numbers held by them and purposes for which the land is being used. D, the nature and extent of interest in land assigned or granted to any person by the state government or by the person authorized under any enactment or direction of the state government or the central government along with, first, the nature and extent of respective interest of such persons and the conditions or liabilities, if any, attached thereto. Second, the land revenue or lease rent payable by such person, if any, and third, such other particulars as may be prescribed. Subsection 2, The record of right mentioned in subsection 1 shall be prepared during a land survey or whenever a state government may by notification so direct. Khatam ho gaya.
Next, isi mein kaun banaye
gaya? Section 109, acquisition of rights to be reported. Pehla wala bhi pre aur mains ke liye bahut important tha, ye bhi.
Records of right to samajh hi rahe honge, hum log ne jo padha tha wahi hai records of right, jisme yaad hai humne unko padha tha records of right mein, I think 13 or 15 entries hoti hain, जिसमें जो उत्तर प्रदेश का खतौनी का सिस्टम था जिसमें कलेक्टर उसको वो करता था, हर सिक्स इयर्स पे उसको रिवाइज किया जाता था। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में नेम, सीरियल नंबर, उनका टाइप्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई तरह के होते थे ना, बीटीआर, बीएनटीआर, तो उनका टाइप्स, लैंड रेवेन्यू, लीजेस, वही यहाँ पे भी बता रहा है कितनी बड़ी होल्डिंग्स हैं, ज्वाइंट है कि सोल है, ये सारा होल्डिंग्स होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में तो इतनी चीज हो गई, अब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में चेंजेस कौन करेगा, प्रिपरेशन उसका कौन करेगा, उसमें जो चेंजेस है, म्यूटेशन है, वो कौन करेगा? तो देखिए, अपने यहां तो तहसीलदार था, यहां देखिए,
एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। नंबर वन, एनी पर्सन लॉफुल्ली एक्वायरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड शैल रिपोर्ट हिज एक्विजिशन ऑफ सच राइट विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड।
छह महीने में, चाहे आप सक्सेशन से ले रहे हो, चाहे आप परचेज कर रहे हो, सिक्स मंथ में इन्फॉर्म करिए। अब देखिए किसको इन्फॉर्म करना, देखिए,
ए टू द पटवारी और एनी पर्सन ऑथराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और तहसीलदार इन केस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया। बी टू द नगर सर्वेक्षक और एनी पर्सन ऑथराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और तहसीलदार इन केस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया provided that when a person acquiring the right is a minor or is otherwise disqualified, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the patwari or nagar sarvekshak or the person authorized or the tehsildar।
ध्यान रखिए, अगर purely agricultural land है तो पटवारी को report कर रहे हैं, और अगर ये urban area का मामला है, अर्बन एरिया मतलब गांव में भी जो अर्बन एरियाज होते हैं, रियासी वाले होते हैं, अगर उसका है तो इसको नगर सर्वे सर्वेक्षक, नगर सर्वेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और चलिए
फिर, एक्सप्लेनेशन वन है
छोड़ दीजिए,
टू है
छोड़ दीजिए,
थ्री है, फोर है,
ये सब एक्सप्लेनेशन छोड़िए।
सब सेक्शन टू,
हाँ,
when any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge or land used for agricultural purposes or in respect of which a khasra has been prepared is registered under the Indian Registration Act 1908, the registering officer shall send an intimation to the tehsildar having jurisdiction over the area in which the land is situated in such form and at such times as may be prescribed।
ठीक है, इसमें भी कोई माइनर चीज नहीं, रजिस्ट्रार तहसीलदार को भेज रहे हैं। ठीक है,
सब सेक्शन 3, एनी पर्सन हुज राइट्स, इंटरेस्ट और लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड और टू बी और हैव बीन एंटर्ड इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर शैल बी बाउंड ऑन द रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक और पटवारी इंगेज्ड इन compiling or reversing the record or register to furnish or produce for his inspection।
ये मत पढ़िएगा, इसको छोड़ दीजिए, और चलिए, उतना डिटेल नहीं।
Subsection 4, any person neglecting to make the report required by subsection 1 or furnish the information or produce the documents required by subsection 3 within the period specified therein shall be liable at the discretion of the tehsildar to a penalty not exceeding 5000 rupees।
अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिक्स मंथ है ना, टाइम कितने दिन का है, छह महीना, सिक्स मंथ में, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में सिक्स मंथ के भीतर अगर आपने म्यूटेशन की कार्रवाई नहीं स्टार्ट की, इन्फॉर्म नहीं किया पटेल नगर सर्वेक्षक एटसेट्रा या तहसीलदार को, तो यू आर लाइबल फॉर पेनाल्टी, डिलेट के लिए 5000 पेनाल्टी इम्पोज की गई है। तो सिक्स मंथ में अगर आपने ऐसा एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन एटसेट्रा के बारे में जानकारी नहीं दी, तो फिर आपको 5000 का पेनाल्टी लगेगा। और चलिए
इसके बाद फोर क्या आते हैं, सबसेक्शन फोर एनी पर्सन निग्लेक्टिंग टू मेक द रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाई सबसेक्शन वन
हो गया
अच्छा ये हो गया सॉरी फाइव एनी रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट अंडर दिस सेक्शन रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 110
छोड़ दो बाकी छोड़ दो विल देखिए विल किसी के राइट को एक्सटेंड नहीं करता है एक्सटिंक्शन की बता रहा क्रिएट कर रहा है तो विल में भी होगा क्या ना अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बस एक मिनट अभी हम लोग रुक जाते हैं देखते हैं म्यूटेशन में क्या क्या इसमें कवर कर रहा है आगे चलिए म्यूटेशन देखिए
सेक्शन 110 म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन लैंड रिकॉर्ड
देखिए अब आ गया म्यूटेशन तो अब जरा सा अभी पता चल जाएगा हाँ
द पटवारी और नगर सर्वेक्षक और पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन 109 शैल इंटर इनटू अ रजिस्टर प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज एवरी एक्विजिशन ऑफ राइट रिपोर्टेड टू हिम अंडर सेक्शन 109 और विच कम्स टू हिज नोटिस फ्रॉम एनी अदर सोर्स
तो देखिए म्यूटेशन में दोनों तरह का होता है ना बाय सक्सेशन और बाय ट्रांसफर तो इसमें विल भी आ जाएगा और कह रहा है कि वो सारी प्रक्रियाओं में 6 मंथ का आपको लिमिटेशन है नहीं तो पेनाल्टी लगेगी और फिर उसके बाद यही पटेल पटवारी नगर पर्यवेक्षक या जो एज द केस में भी उनके पास जाएगा और वही नाम को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे और चेंज ऑफ द नेम इज कॉल्ड म्यूटेशन ठीक है और चलिए
सब सेक्शन 2 द पटवारी और नगर सर्वेक्षक और पर्सन ऑथराइज एज द केस में बी शैल इंटीमेट टू द तहसीलदार ऑल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ राइट रिसीव्ड बाय हिम अंडर सब सेक्शन 1 इन सच मैनर एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट देयर ऑफ बाय हिम
ठीक है
3 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 109 और ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सच एक्विजिशन ऑफ राइट फ्रॉम एनी अदर सोर्स The tehsildar shall within 15th day A. Register the case in his court B. Issue a notice to all person interested and to such other person and authorities as may be prescribed in such form and manner as may be prescribed and C. Display a notice relating to the proposed mutation on the notice board of his office and publish it in the concerned village or sector In such manner as may be prescribed, 4th, the tehsildar shall, after affording reasonable opportunity of being heard to the persons interested and after making such further inquiry as he may deem necessary, pass orders relating to mutation within 30 days of registration of case in case of undisputed matter and within 5 months in case of disputed matters and make necessary entry in the village Khasra or sector. खसरा एज द केस मे बी एंड इन अदर रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड्स 5th द तहसीलदार शैल अप्लाई अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 4 एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट
देखिए क्या कह रहा है इसको समझिए ये असल में हम लोग पूरा प्रोसेस इन्होंने बता दिया क्वेश्चन आ सकता है मेंस में राइट डाउन द प्रोसेस फॉर म्यूटेशन इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या लैंड रिकॉर्ड में तो देखिए इसमें पूरा बता रहा 109 110 दोनों क्लब अप करिए तो कह रहा है कि अगर कोई भी चेंजेस आए हैं अब बहुत तरह के हो गए ना आइदर बाय एक्विजिशन और बाय ट्रांसफर और बाय सक्सेशन उसकी रिपोर्ट करे जिसके फेवर में आ रहा है वो रिपोर्ट करे विद इन 6 मंथ किसको रिपोर्ट करे प्योर लैंड का मामला है तो पटवारी और अर्बन एरिया का मामला तो नगर सर्वेक्षक जब इनको ये रिपोर्ट मिलेगी देखिए हमने माने बेनिफिशियरी जिसके नाम पे वो लैंड आया जिसने एक्वायर किया है वो विद इन 6 मंथ करे पटेल और नगर पर्यवेक्षक को सर्वेक्षक को अब नगर सर्वेक्षक जिस दिन उसको रिपोर्ट मिली है उस दिन से देखिए 30 डेज के भीतर मेरे ख्याल से तहसीलदार को रिपोर्ट करेंगे क्योंकि फाइनल म्यूटेशन का राइट किसके पास है तहसीलदार तो अब वो लोग अपनी रिपोर्ट लगाकर तहसीलदार को भेज देंगे अब तहसीलदार क्या करेगा पहले दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन चेंज करने से पहले 15 डेज का एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है और जिस एरिया का मैटर होता है ना वहां पर उसको चिपका दिया जाता है वहां पर एक पेस्ट कर दिया जाता कि ऐसा ऐसा आया है, ये एप्लीकेशन है, ये चेंजेस होने जा रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, अगर अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन है, यानी कोई आवाज आ रही ना बेटा, हाँ, अगर अनडिस्प्यूटेड है तो देखिए कितने दिन में लिखा कर देगा उसको, 30 days है ना, और अगर डिस्प्यूट है तो कितने महीने में सॉल्व करना है हमको, 5 months। तो इस तरह से एक अपना समरी नोट्स बनाइए कि 109, 110 इन दोनों को मिला लें तो ये म्यूटेशन की प्रोसीडिंग बता रहा है। तो कोई भी चेंज है उसको 6 months में रिपोर्ट करिए। अब उसके बाद रिपोर्ट किसको करें, टू हूम सच रिपोर्ट हैज बीन सेंड, तो पटवारी और नगर सर्वेक्षक। अब ये नगर सर्वेक्षक और पटवारी उस रिपोर्ट को किसको सेंड कर देंगे, तहसीलदार को, विद इन मेरे ख्याल से 30 days। फिर जो तहसीलदार हैं वो उनको इंक्वायरी करना है कि भाई ये सही है कि गलत है। इन सब मैटर की इंक्वायरी करने के लिए वो पहले पब्लिक नोटिस देंगे और उसके बाद हियरिंग वोरिंग करेंगे। अनडिस्प्यूटेड है तो विद इन 30 days और डिस्प्यूटेड है तो 5 months में मैटर को सॉल्व कर देंगे और म्यूटेशन फाइनली टेक प्लेस हो जाएगा। तो 109, 110 को मिला लें तो म्यूटेशन की प्रोसीडिंग आपको समझ में आ जाएगी। और चलिए म्यूटेशन कौन कर रहा है, तहसीलदार, रिपोर्ट किसकी आ रही है, पटवारी या नगर सर्वेक्षक, ठीक है। हाँ छोड़ दीजिए 110,
110 छोड़,
हाँ वो 109, 110 करेंगे लोग, हाँ क्या करेंगे विंटर वेकेशन में,
111 jurisdiction of civil courts. The civil courts have all jurisdiction to decide any dispute to which the state government is not party relating to any right which is recorded in the records of rights.
यहाँ सिविल कोर्ट का देखिए jurisdiction barred नहीं है, यूपी रेवेन्यू कोड में बार्ड है, यहाँ बार्ड याद है 102045 में कहीं पढ़े थे ना, कुछ ऐसे ही था ना 206 में, हाँ कहीं भी मतलब बार है ना, यहाँ कह रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है तो ज्यूरिसडिक्शन बार नहीं, उल्टा है। इसलिए मध्य प्रदेश में लैंड का काम सिविल जज के पास है, गांव की जमीनों का काम, उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई काम गांव से रिलेटेड नहीं, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं कंपरेटिव पढ़ाते चल रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग कंपरेटिव में जब लगता है तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर होती है पिक्चर। तो यूपी में बार है, जैसा बच्चे बता रहे हैं 206 वगैरह में बार है ज्यूरिसडिक्शन, पर एमपी में बार नहीं किया गया है। और चलिए
113 सेक्शन 113 करेक्शन ऑफ एरर्स इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। The collector may at any time correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights prepared under section
113। जो clerical error होता है, शायद यहाँ पे भी कुछ बोलते हैं टिटिम्मा और टिम्मा, कुछ ऐसे word है। तो जो clerical mistake है ना, उसको कौन solve कर रहा है, collector। ध्यान रखिएगा, there is a difference between करेक्शन एंड म्यूटेशन। म्यूटेशन में तो पूरा क्या हो रहा है, कोई गलती नहीं है, वहां तो एक की जगह दूसरे का नाम चढ़ने जा रहा है, एक्विजिशन ऑफ राइट है। और यहाँ पर हो सकता है नाम कोई हो, गलत लिख दिया हो, कुछ साइज गलत लिख दिया हो, प्लाट नंबर गलत हो गया हो, तो इसको 113 में कलेक्टर रेक्टिफाई करते हैं। तो करेक्शन करने का काम कलेक्टर का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, और म्यूटेशन करने का काम तहसीलदार। कहीं पॉइंट बनाते चलिएगा, नेक्स्ट चलिए
सेक्शन 114 लैंड रिकॉर्ड्स सब सेक्शन 1
फॉलोइंग। अभी तक क्या पढ़े थे, रिकॉर्ड ऑफ राइट, अब क्या पढ़ने चल रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट आपका इंडिविजुअल होता है, यानी भूमि स्वामियों का रिकॉर्ड पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं जमीनों का रिकॉर्ड। हाँ,
Following land records shall be prepared for every village, namely A, village map, abadi map and block map under section 107, B, record of rights under section 108.
यानी लैंड रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल हो गया, विलेज मैप, आबादी मैप और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी जिसको हम लोग खतौनी कह रहे थे 108 वाली, वो भी इसमें शामिल हो गई लैंड रिकॉर्ड में। हाँ,
सी विलेज खसरा और विलेज फील्ड बुक इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डी भू अधिकार पुस्तिका अंडर सेक्शन 114 कैपिटल ए। ई नंबर वन डिटेल्स ऑफ ऑल अनऑक्युपाइड लैंड अंडर सेक्शन 233। नंबर टू निस्तार पत्रक अंडर सेक्शन 234। नंबर थ्री, नंबर थर्ड इसका है वाजिबुल अर्ज इफ एनी अंडर सेक्शन 242। और एफ है डिटेल्स ऑफ डाइवर्टेड लैंड। एंड जी एनी अदर रिकॉर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
हेडिंग क्या थी? लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो अगर मोटा मोटा कहें तो रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसको हमने क्या 108 में पढ़ा था, खतौनी, खसरा जिसको फील्ड बुक, विलेज मैप, तो देखिए दूसरा ए बी सी में वही आ रहा है। फिर कह रहा है कि अनऑक्युपाइड लैंड, जिन लैंड में ऑक्युपेशन नहीं है, जो सरकार की है वेस्टेड लैंड, वो अनऑक्युपाइड लैंड के बारे में। निस्तार पत्रक, निस्तार पत्रक अभी आगे चल के आप सबको पढ़ाएंगे 224 या जो भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्तार पत्रक में उन सर्विस लैंड, सर्विस लैंड याद है ना, जो कोटवार को दी जाती है, ठीक है, को जो विलेज चौकीदार होता है उसको सेवा करने के लिए सर्विस लैंड, तो अनऑक्युपाइड लैंड भी वही सर्विस लैंड पे दी जाती है। और फिर वाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक में अनऑक्युपाइड लैंड के बारे में जिक्र होता है, और वाजिबुल अर्ज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम नहीं होता। ये भी मिलेगा 242 ना, ये कस्टमरी है, वो लैंड जो कस्टमरी राइट हेल्ड करते हैं, जो लोग थ्रू कस्टम्स हेल्ड करते हैं, विलेज का नहीं होता, ऐसे विलेज का मैदान हो गया, विलेज का कुछ तालाब उलाब हो गया, तो जिसमें कस्टमरी राइट है। वाजिबुल अर्ज, वाजिब उल अर्ज, जो शब्द आए दिमाग में रखिएगा, 242 कस्टम से रिलेटेड। तो लैंड रिकॉर्ड में कह रहा सारे टाइप के लैंड के बारे में जिक्र होगा, इंक्लूसिव है, देख लीजिए सब है, ए बी सी डी एफ। तो पूछा जाए लैंड रिकॉर्ड क्या क्या है, अब देखिए भू और भी इसमें कुछ है।
हाँ, सब सेक्शन 2 है। फॉलोइंग लैंड रिकॉर्ड शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच सेक्टर इन एवरी अर्बन एरिया, नेमली ए सेक्टर मैप अंडर सेक्शन 107 रिकॉर्ड ऑफ,
इसके बाद आओ
भू अधिकार पुस्तिका,
भू सेक्शन 114
कैपिटल ए। इसका नाम था पहले भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका।
ऋण पुस्तिका याद है, किसान बही हम लोग एक पढ़े थे 41 में, यूपीआरसी, वही है ये भू अधिकार पुस्तिका, जो हर किसान अपने हाथ पे रखता है पासबुक। हाँ,
द तहसीलदार में सब सेक्शन 1 इसका कहता है 114 कैपिटल ए, भू अधिकार पुस्तिका का सब सेक्शन 1 कहता है द तहसीलदार में प्रोवाइड टू एवरी भूमि स्वामी whose name is entered in the khasra prepared under section 114A, भू अधिकार पुस्तिका in respect of his all holdings in the village or sector as the case may be, which shall be provided to him in such form and on payment of such fees as may be prescribed।
ठीक है।
Subsection 2, the भू अधिकार पुस्तिका shall consist of two parts bound as one book which shall contain such particulars as may be prescribed।
दो पार्ट में होता है, हर किसान पैसा देके इसको बनवा सकता अपने लिए पासबुक टाइप का। हाँ।
Subsection 3, a तहसीलदार may on his own motion or on an application of the भूमि स्वामी after making such inquiry as he deems fit correct any wrong or incorrect entry in भू अधिकार पुस्तिका। सेक्शन 115, करेक्शन ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड।
अब देखिए लैंड रिकॉर्ड में अगर कोई करेक्शन है तो देखिए कौन कर रहा, बस सीधे देख के बताओ,
SDO, सब डिविजनल ऑफिसर।
ठीक है, लैंड रिकॉर्ड में कोई करेक्शन है तो SDO ठीक कर देगा, भी छोड़िए और चलिए।
117 प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड, छोड़
दीजिए ये भी हटा दीजिए, अब कम कम पढ़वाइए बस, टिक कराइए। हमारे पास हो गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स 108, लैंड रिकॉर्ड्स 114 और भू अधिकार पुस्तिका, ये था 114 कैपिटल ए। ठीक है, तीन रिकॉर्ड ऑफ राइट हमने पढ़े लैंड रिकॉर्ड टाइप के। हाँ,
अब आ जाइए चैप्टर 10, बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स सर्वे मार्क्स।
बाउंड्री मार्क, बाउंड्रीज, बाउंड्री मार्क, हमको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन शायद यूपी का हम लोग यही पढ़े थे। व्हाट इज बाउंड्री मार्क सेक्शन 20, बाउंड्री मार्क डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स। यानी हर जैसे शहर में तो चलिए डिमार्केशन है, छोटे छोटे मकान है, प्लाट, हम लोग कहते ना कि कैसे गांव में कैसे एक मेजरमेंट किया जाए, तो उसके लिए कहीं पिलर्स लगते होंगे, उस पर सर्वे नंबर लगता होगा। तो उसी तरह की यहाँ पे भी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में बाउंड्री मार्क की। तो कौन बाउंड्री मार्क का इरेक्शन कराएगा, पेनाल्टी होगी तो क्या होगा, वही इसमें हम लोग को सर्च करके टिक कर लेना। हाँ, देखिए
सेक्शन 124 कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क ऑफ विलेज सेक्टर एंड सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। सब सेक्शन 1, बाउंड्रीज ऑफ ऑल विलेज एंड सेक्टर शैल बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय परमानेंट बाउंड्री मार्क्स। सब सेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी विलेज और सेक्टर बाय नोटिफिकेशन ऑर्डर दैट द बाउंड्रीज ऑफ ऑल सर्वे नंबर्स ब्लॉक नंबर्स और प्लॉट नंबर्स ऑफ द विलेज और सेक्टर और पार्ट देयर ऑफ शैल ऑल्सो बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय बाउंड्री मार्क्स।
ठीक है।
थर्ड, सच बाउंड्री मार्क्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड बी ऑफ सच स्पेसिफिकेशन एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फोर्थ, एवरी होल्डर ऑफ अ लैंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द परमानेंट बाउंड्री मार्क्स इरेक्टेड देयर ऑन। अब सेक्शन 125, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्री बिटवीन,
यही इंपॉर्टेंट है, हाँ, कौन सा
बाउंड्री बिटवीन विलेज सेक्टर्स सर्वे नंबर्स ब्लॉक नंबर्स एंड प्लॉट नंबर्स। ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेज सेक्टर सर्वे नंबर्स ब्लॉक नंबर्स एंड प्लॉट नंबर्स वर सच वेयर सच बाउंड्रीज हैव बीन फिक्स्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124 शैल बी डिसाइडेड बाय द तहसीलदार आफ्टर लोकल इंक्वायरी एट विच ऑल पर्सन इंटरेस्टेड शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपियरिंग एंड प्रोड्यूसिंग एविडेंस।
कौन बाउंड्री मार्क डिस्प्यूट सॉल्व कर रहा है, और यूपी में भी तो वही था तहसीलदार। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए 125 में तहसीलदार। हाँ, और
126 इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पोजीशन। सबसेक्शन 1, व्हेन अ बाउंड्री हैज बीन फिक्स्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 124 द तहसीलदार मे समरीली इजेक्ट इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड एनी पर्सन हु इज रॉन्गफुली इन पोजेशन ऑफ एनी लैंड विच हैज बीन फाउंड नॉट अपर्टेन टू हिज होल्डिंग और टू द होल्डिंग ऑफ एनी पर्सन थ्रू और अंडर होम ही क्लेम्स।
ठीक है, तहसीलदार ही अनलॉफुल जो पोजेशन में है उनको इजेक्ट करेगा। तो इजेक्टमेंट ऑफ आप कह सकते हैं ट्रेस्पासर वगैरह किस में आ गया, तहसीलदार। ठीक है, और चलिए
डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइन्स।
और पता बाबा को बताते चलिए, हम बता देंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करेंगे ना। चलो और आगे,
सेक्शन 130 पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स।
याद है 224 या 227 227 है, एकदम बढ़िया। तो वही देखो यहाँ पे भी है, यही वो सेक्शन है कि पेनाल्टी अगर कोई डिस्ट्रक्शन करेगा बाउंड्री मार्क का, तो देखिए कई रुपये पेनाल्टी लगा रहे हैं। वहाँ 1000 था ना, शायद ऐसे ही था, देखिए यहाँ का कितना लगा रहे हैं।
सेक्शन 130 पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। इफ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज और इंजर्स और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी रिमूव्स अ बाउंड्री और सर्वे मार्क लॉफुली कंस्ट्रक्टेड ही मे बी ऑर्डर्ड बाय द तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड टू एक्ट टू पे सच फाइन एंड not exceeding 5,000 rupees for each mark so destroyed, injured or removed, as may be the opinion of the tehsildar or any other revenue officer empowered to act, be necessary to defray the expense of reporting the same.
ठीक है, कितना रुपया पेनल्टी मार्क है? 5,000. कौन करा रहा है? जनरली तहसीलदार. बस इतना जानना, 130 में 5,000. अगर आप पेनल्टी मार्क इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर रहे हो बाउंड्री मार्क, तो आपको पेनल्टी मिलेगी 5,000 फॉर ईच डिस्ट्रक्शन. ठीक है, और चलिए
131 राइट्स ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट इजमेंट्स सब सेक्शन 1. In the event of a dispute arising as to the route by which a cultivator shall have access to his fields or to the unoccupied lands or pastures, lands of the village, otherwise than by the recognized roads, paths or common land, including those road and paths recorded in the village wajibul arj prepared under section 242, or as to the source from a course from or course by which he may be avail himself of water, or as to the course by which he may drain water from his field, a tehsildar may, after local inquiry, decide the matter with reference to the previous custom in each case and with the due regard to the conveniences of all the parties concerned.
छोड़ दीजिए इसको भी मत, बस इतना टिक लगा लीजिए. इजमेंट का रिलेटेड डिस्प्यूट है, कस्टमरी इजमेंट है कि कहाँ से पानी फ्लोइंग होता है ना वाटर, कोई वहाँ ड्रेनेज सिस्टम तो होता नहीं होगा, तो किधर से पानी किधर जाएगा. तो एक कस्टम से रिलेटेड या इजमेंट्री राइट, राइट टू वे किसके पास है किसके पास नहीं है, ये सब अगर डिस्प्यूट होगा तो तहसीलदार विल सॉल्व इट. नेक्स्ट बताइए. अभी तो तहसीलदार ही बड़ा कॉमन नाम आ रहा है.
सेक्शन 133 रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन.
हटा दो, छोड़ दीजिए.
एक दो चीज है, तहसीलदार पहली चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तहसीलदार इसमें. और इसका सब सेक्शन 3 कहता है, इफ एनी पर्सन फेल्स टू रिमूव द इनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन और मोर देन 7 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिमूवल देयर ऑफ अंडर सब सेक्शन 1, then without prejudice to the penalty that may be imposed under subsection 2, the sub-divisional officer shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of 15 days. सब निशान करते चलिए,
ये सब आता है. वही कह रहा है कि अगर कोई obstruction वगैरह कर रहे हैं, encroachment कर रहे हैं, obstruction और नहीं हटाए ऑर्डर के बावजूद, 7 days, कितने दिन का समय देते हैं? 7 दिन. तो फिर इम्प्रिजनमेंट SDO कराएगा 15 days का, सिविल इम्प्रिजनमेंट. ठीक है,
फिर आगे बढ़ते
हैं. हाँ, आगे बढ़ते चलिए.
चैप्टर 11 रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू.
अब आ गए हम लोग चैप्टर 11 पे. अभी हम लोगों ने पढ़ा 9 लैंड रिकॉर्ड, फिर हम लोग आ गए थे इस पे बाउंड्री मार्क से रिलेटेड 10 पे. 11 आ रहा है जो लैंड रेवेन्यू, जो सरकार को हम लोग लैंड रेवेन्यू देते हैं, जिनकी गांव में ज़मीनें होंगी, उस लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट. और याद होगा हमने उत्तर प्रदेश के केस में कहा था रिकवरी ऑफ, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू. सबको सेक्शन याद है ना, 170 ना अपने यहाँ था ना, आ गया ना, तुमको आया है गोरखपुर खिचड़ी मेला,
जाएंगे ना अभी,
जाओगे? जरूर जाना. और खाजा, खाजा खाओगे?
कुछ चाहिए बताइएगा,
हम एकदम बताएंगे तुमको. वो क्या और मिलता है मेले में, वो जो नहीं नेताजी की टोपी, नेताजी का टोपी है ना, तिकोनिया मिलता, वही तो है वो खिचड़ी मेला में, वो है वो जो चीज. और बाकी जो अच्छी चीजें तुम नहीं ला सकते, देखना पड़ेगा. झूला लगेगा, डांस देखने जाते हैं वहां ना देश, पूछो बच्चे से, बताएगा थोड़ी ना, डांस देखने जाते थे तो. हाँ बेटा, वो अभी भी आता है, ओ माय गॉड, वो चीजें अपने आप में ही, मतलब मेला जाना और मेले में खो जाना और फिर पिक्चरों में बाद में मिलना, वो सब चीजें अब तो परमानेंट हो गया. वो उतना जब से मोबाइल वोबाइल आ गया ना, तब से बेकार हो गया सब मेला वाला ना. जब मेला दिलों का लगता था तो आता है और चला जाता है, आते हैं मुसाफिर आना ही जब जाना ही था तो आते ही क्यों है। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना, बिना गाने के तो हमारी क्लास हो ही नहीं सकती है ना। तो काम देख लो खुद आगे कहो।
सेक्शन 137 लैंड रेवेन्यू फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड।
पहला चार्ज किसका होगा, ना बैंक का चार्ज होगा ना किसी मार्गेज का चार्ज होगा। सबसे पहले कौन वसूलेगा पैसा, सरकार कहती है भैया देखो हमारा चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे लैंड रेवेन्यू, सबसे पहले हम काटेंगे। आपकी तो बहुत बढ़िया काम करने जा रही है सरकार, मजा आ गया कह रहे हैं शायद आपका वोटर आई कार्ड से पैन को लिंक कर दें, अरे वो सॉरी आधार लिंक कर देंगे ना, मजा आ जाएगा ना। क्यों मजा आएगा, ऐसा क्या होगा कि इसको लिंक करने से क्या फायदा, कोई बताए बेटा क्यों। आखिर जो हम लोग का वोटर आई कार्ड है जिसमें ना चेहरा दिखता है ना कुछ दिखता है ना, आपकी जगह पहले मम्मी चेहरा बना दिया, वोटर आई कार्ड वही होता था ठीक है। और एक होता है आधार कार्ड जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बवाल हुआ, मां जजेस बैठ गए और 9 या कितना जजेस बेंच बैठी थी, खैर राइट टू प्राइवेसी उसी उसमें हो गया, मगर आधार कार्ड चला वैलिड बना गया। दोनों को लिंक करने का क्या फायदा होगा सरकार को, बस एकदम सही, बहुत बढ़िया। वोटिंग कैपेसिटी बहुत सही, फ्रॉडुलेंट वोटर पकड़े जाएंगे। और आप डबल कैपेसिटी में तो नहीं काम कर रहे हैं, पहले रहते लखनऊ में है, लखनऊ का भी आपका पास सब कार्ड है, और पता चला घर है गांव है आजमगढ़ में, पहले यहाँ भी वोट दे रहे हैं और वहाँ भी जा रहे हैं। तो इसको रोकना है क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट वोटर कितने हैं, तो लिंक करने जा रहे हैं। उन दोनों को लिंक कर देंगे तो उनको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि जो फेक वोटर्स हैं जो एक 10-10 जगह वोटिंग करते हैं उनको ही रोकना है, तो अच्छा है लिंक कर रहे हैं। हाँ बताइए।
द लैंड रेवेन्यू असिस्ट ऑन एनी लैंड शैल बी फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड एंड ऑन द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ।
हाँ किस पे नहीं दिया जाएगा वो देख लीजिए, 5 हेक्टेयर के नीचे नहीं देते हैं ना, देखिए कहाँ नीचे नॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। आगे पढ़ते चलिए बताते चलिए। हाँ
पर्सन रिसीविंग लैंड रेवेन्यू बाउंड टू गिव रिसिप्ट।
हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं लखनऊ करें, उत्तर प्रदेश में अमीन करता है, कौन करता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट, अमीन एक बहुत नीचे का है जिसका जिक्र हमारे उसमें तो नहीं आता है यूपीआरसी में, वैसे यहाँ पे पटेल होटल रिकवर करते हैं। तो जो भाई लैंड रेवेन्यू अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सरकार के खजाने में जमा करना है ना, रिपोर्ट करना होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए रिसिप्ट नहीं दे रहे हो तो उसमें पेनाल्टी उनके ऊपर भी।
Every person who receives a payment on account of land revenue or on account of any sum of money recoverable as an arrear of land revenue shall grant a receipt to the payee for such sum and in such form as may be prescribed.
ठीक है।
Section 43, penal interest or delayed on delayed payment of land revenue. If land revenue is not paid up to the end of the period as specified in section 140, simple interest shall be payable on the arrears thereafter till the date of payment at the rate of 12% per annum for first 12 months and thereafter at the rate of 15% per annum. Provided that no such interest shall be payable for delayed payment where any payment of land revenue has been suspended by the order of the government.
तो अगर आप साल भर में लैंड रेवेन्यू नहीं पे किए तो कितना परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट 12%, और अगर साल भर से ज़्यादा फिर और डिफॉल्ट कर दिए तो 15% है। तो आपको बस यही टिक करना है 12% जो पे और 15%, तो 12% ही पूछा जाएगा आपसे। और चलिए
के बाद तो निशान नहीं लगा,
एग्जेम्पशन वाला होगा ना, 5 एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू या रिमिशन कुछ होगा कहीं,
रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स सेक्शन 144। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द पर्संस ग्रांट रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन year in which crops have failed in any area, or which, or in which crops could not grown in any area in consequence of any order made under any law by competent
authority. इसके नीचे देखो कहीं वो exemption 5
hectare वाला. Certified account to be evidence इसके बाद देखिए. Areas of
5 hectare तक exempted हो गए
देखिए. Process of recovery of area.
अच्छा process of recovery of area तो आप लोग note कर लीजिएगा कैसे. अच्छा ये जरूर देख लीजिएगा इसी पहले कहीं रहा होगा किसी section में कि 5 hectare तक की लैंड एग्जेम्प्टेड होती है उसको लैंड रेवेन्यू नहीं देते हैं मार्जिनल फार्मर कहेंगे ना उसको. हाँ प्रोसेस बताइए
डिफिनीशन ऑफ एरियर एंड डिफॉल्टर है इसमें.
हाँ इसमें देख लीजिए तो
सेक्शन 140 नहीं.
हाँ
डेट्स ऑन विच लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड पेबल हो गया.
प्रोसेस में आ जाइए सीधे.
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू
ठीक है ये भी
छोड़ दो. द फॉलोइंग पर्सन शैल बी लायबल भूमि स्वामी holding consisting of land leased by the state government, the lease thereof, when there are more than one municipal lease is
holding. नहीं भी छोड़ दीजिए सब छोड़ के चलिए बस process
for recovery of area.
Process पढ़ लीजिए
147
process for recovery of area किस किस ढंग से याद है अपने यहाँ याद है. पहले writ of demand होता था फिर arrest warrant होता था. arrest उसमें कुछ चीज़ें arrest से कुछ लोग exempted होते थे. मैक्सिमम पीरियड ऑफ अरेस्ट 171 में था. फिर मूवेबल अटैचमेंट होता था जिसमें बहुत सी चीज़ें नॉन अटैचेबल थी ना जैसे बेड बेडिंग्स ज्वेलरीज आर्टिजन्स ना. हाँ हाँ ठीक है वो सब बच गया. फिर उसके बाद हाँ वही चीज़ याद रहती. ठीक है बेटा बच्चे ने बताया वाइफ अटैच नहीं होगी और इन केस ऑफ वाइफ हस्बैंड अटैच नहीं होगा क्योंकि भाई दोनों तो पेयर है ना. या तो दोनों को अटैच कर दो तो फिर वो नई दुनिया बसा देंगे जहाँ भी रहेंगे. ठीक है तो इमूव और पहले मूवेबल फिर किसका नंबर आता है इमूवेबल. और इमूवेबल में भी उसका जिस पे रेवेन्यू ड्यू है उसको लीज पे फिर सेल आउट किया था और उसके बाद कोई भी आपकी होल्डिंग. तो इतना प्रोसेस था. यहाँ पे भी जरा सा देखें क्या उसी व्यवस्था में उसी जुगाड़ से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं. तो बताइए
सब सेक्शन 147 प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स सब सेक्शन 1 एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल टू गवर्नमेंट मे बी रिकवर्ड बाय अ तहसीलदार बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस.
वेरी गुड.
By attachment and sale of movable property. B. By attachment and sale of the holding on which arrears is due and where such holding consists of more than one survey number or plot number by sale or of one or more of such survey number or plot number as may be considered necessary to recover the arrears provided that no holding shall be sold for the recovery of any dues of a cooperative society without first exhausting the procedure prescribed in section 154 capital A B B. By attachment of holding on which arrear is due and letting the same under section 154 capital A triple B. By attachment of any other holding belonging to the defaulter which is used for the purposes of agriculture and letting the same under section 154 capital A C. By attachment and sale of any other immovable property wherever situate belonging to the defaulter provided that the process specified in clause A and C shall not permit the attachment and sale of the following, namely one, first, the necessary wearing apparel, cooking vessels, beds and bedding of the defaulter, his wife and children and such personal ornaments as in accordance with the religious usage cannot be parted with any by any woman. नंबर टूल्स ऑफ आर्टिसंस वही सब हैं.
ये सब देख लीजिएगा अपने आप क्या क्या चीजें अटैच नहीं होंगी. तो यहाँ देखिए एक चीज देख रहे होंगे 147 है ना. इसमें देखिए अरेस्ट का नहीं लिखा है ना. देखिए प्रोसेस में अटैचमेंट तो है मूवेबल इमूवेबल वो सब तो ठीक है पर आप देख रहे होंगे यहाँ अरेस्ट का फिलहाल
नहीं, नहीं है.
अच्छा आगे है
है, है, है.
थर्ड वाले में लिखा है
थर्ड में देखो क्या है?
सब सेक्शन 3, द सब डिविजनल ऑफिसर मे कॉज एनी पर्सन कमिटिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख.
50 लाख?
लाख है ना,
पूरे मध्य प्रदेश का नहीं होगा इतना 50 लाख लैंड रेवेन्यू.
To be arrested and shall send him with the warrant to be confined in a civil prison for a period not exceeding 15 days unless the arrears are sooner paid. Provided that no action under this subsection shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the SDO on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison.
तो ये 50 लाख याद रखिए, हमको लगता है तो सिंधिया उंधिया का आएगा इतना ज्यादा मध्य प्रदेश में, है ना. 50 लाख लैंड रेवेन्यू, तो ये तो बहुत बड़ा रीजन का होगा. बहरहाल लिखा है कि अरेस्ट नहीं होगा, अपने यहाँ शायद इतना नहीं था, कुछ बहुत कम सा था, 50,000 शायद था, 50,000 था. यहाँ का देखिएगा, मुझे याद आ रहा 171 UPRC में. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा 50 लाख के नीचे के मामले में अरेस्ट नहीं होगा. तो ये एक बड़ी चीज है, 50 लाख अमाउंट याद रखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है. यानी जनरली एग्जेम्प्ट कर देते होंगे, अरेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, और चलिए,
इतना तो किसी का आता ही नहीं होगा.
नहीं, तो 50 लाख कोई सीढ़िया उंधिया का आवे तो आवे, और क्या, उन्हीं लोगों की इतनी जमीने हैं.
पढ़े और आगे भी.
हाँ,
provided that no action under this subsection shall be taken unless a notice is issued calling upon such person to appear before the sub-divisional officer.
ठीक, अच्छा, SDO याद रखिएगा, अरेस्ट वाला सारा प्रोसेस किसके पास है? SDO के पास. ठीक है,
on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison.
ठीक है,
subsection 4. Not with standing anything contained in subsection 3, no person shall be arrested or confined in a civil prison for an arrear of land revenue where and for so long as such person is a minor or a person mentally ill or mentally retarded. A ho gaya, aur B kehta hai is exempted under section 133, 35, 35, capital A of Code of Civil Procedure. और fifth है, subsection 5th कहता है इसका, the sub-divisional officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security.
ठीक है, चलिए. तो प्रोसेस में 147 था, अटैचमेंट है मूवेबल इमोबल, मगर कुछ चीजों को अटैच नहीं किया जाएगा, वो हम लोगों ने पढ़ा. और अरेस्ट SDO करा सकते हैं, मगर वो डिफॉल्ट हो 50 लाख के ऊपर. और चल दिए, छोड़ दिए नेक्स्ट सेक्शन,
फिर बीच में सब छूटा हुआ है.
छोड़ दिए, जो छूटा हो छोड़ते चलिए. हाँ, अरे
लैंड रेवेन्यू फिर सीधे 157 पे आ जाइए.
157
चैप्टर 12
अब आ गया, होल्डर चैप्टर 12 आ गया, टीन्योर होल्डर, भूस्वामी, उनके क्या राइट्स होंगे. याद होगा हम लोगों ने भी पढ़ा था सेक्शन 74 से, राइट्स ऑफ टीन्योर होल्डर, उनके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चैप्टर 12 में. वहाँ एक ही तरह का टीन्योर होल्डर होता है, उसका नाम होता भूस्वामी. तो देखिए, अब वही हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, बताइए.
सेक्शन 57 क्लास ऑफ टीनियर,
157 क्लास ऑफ टीनियर.
फ्री में बहुत कुछ आया था इस सेक्शन,
बहुत ज्यादा.
सेक्शन 157 क्लास ऑफ टीनियर, देयर शैल बी ओनली वन क्लास ऑफ टीनियर होल्डर्स ऑफ द लैंड हेल्ड फ्रॉम द स्टेट टू बी नोन एज भूमि स्वामी.
एक ही होता ही वहां, यहाँ तो तीन चार तरह के थे ना, तीन तो थे ही, BTR, BNTR, आसामी गवर्नमेंट लेसी, यहाँ पर केवल एक है और उसका नाम है भू स्वामी. बहुत बढ़िया.
अब सेक्शन 158 बताता भूमि स्वामी को, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड belong to any of the following classes shall be called a Bhumi Swami and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon a Bhumi Swami by or under this code, namely, अब इसके बाद पढ़ लीजिएगा, सिरोंज रीजन,
वो सब रीजन रीजन है, उतना कुल मिलाकर भू स्वामी का बता रहा डिफिनीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो रीजन उजन है मध्य प्रदेश का, महाकौशल, सिरोंज, ये सब तो रीजन है ना। जब मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मेरे पास कुछ लोकल जीएस भी तो आती है वहाँ, हाँ, तो वो आप लोग पढ़ेंगे ना, कितना वो कमिश्नरेट है, कौन सा बड़ा कमिश्नरेट है, कितने ज़िले हैं, पहले तो 52 या कितना होते थे, अब पता नहीं, बड़े ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट तो बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह का ये सब इसमें देख लीजिएगा भू स्वामी। अच्छा, बस एक चीज़ मेरे आईक्यू के लिए बता दीजिए, जो पाए कोई लैपटॉप मोबाइल, कोई बच्चा पाया लैपटॉप या मोबाइल जो 25 को मिला था? अरे वो खोया हुआ नहीं,
राम स्वरूप वालों को मिला है,
मिला,
फिफ्थ ईयर वालों को।
अच्छा, नहीं, आप में से कोई पाया
जो उस टैब से?
हाँ, रुको रुको, हाँ पाई, हाँ बताओ बेटा, तो उसी से ज्वाइन की हो? अच्छा, उसमें किस कंपनी का है? अच्छा, सैमसंग का है, ओ, मतलब अच्छा टाइप का टैब है, और प्रधानमंत्री और उन लोगों का फोटो भी आता है? अच्छा, नहीं देखो, बहुत जलन हो रही है तुमसे, है ना, उसको बचा के रखना बेटा, क्योंकि बहुत जेलसी हो रही है, बल्कि इंग्लिशमैन अंदर अंदर जलन चल रही है कि आप पा गई और कोई नहीं पाया, देखिए भाग इसको कहते हैं। हाँ बेटा,
सर हमारे कॉलेज में सर उन लोग ने केवल 10 नाम दिए स्टार्टिंग के, जितने हाँ, थे
हाँ,
अभी बाकियों को बताया है कि सेकंड लिस्ट आएगी तब मिलेगा,
सेकंड लिस्ट
हमारा अच्छा, नहीं दिया,
नहीं सर, हमने भी नहीं दिया,
अभी नहीं दिया ना,
नहीं सर,
तो इलेक्शन के बाद मिलेगा,
अभी नहीं मिलेगा सर,
देखिए सर, और क्लास के आधे बच्चों को दिया, आपको को दिया ही नहीं।
अच्छा, कम पड़ गया लग रहा। अरे बाप रे, मगर एक बच्चा पाया हमारे यहाँ, नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले सब पाए हैं, बता रहे, सब पा गए भैया, कमता में रजत रजत, हाँ हाँ, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में प्रबंधक के ऊपर था कि कितना परस्यू कर जाए। देखिए एलयू को तो मिलना ही मिलना था, वो तो सरकार का प्योरली ग्रांटेड है, उन्होंने पूरी लिस्ट दी, उनको मिल गया, बाकी जगहों पे लिस्टिंग सही से नहीं पूछी होगी, इसीलिए वहाँ का दिक्कत हो गया। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले सब पाए हैं, बच्चे पाए हैं, अच्छी सोच, ईमानदार नियत, ऐसी है अपनी सरकार, तो कम से कम ईमानदारी से मिला है। अब प्रियंका दीदी शायद इकाना में दौड़वाएंगी, आ गया है कि इकाना में दौड़ होगी मैराथन की, तब आपको स्कूटी शायद, जो लेना देना है सब ले डालो इलेक्शन के पहले, बाद में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। और अखिलेश जी भी कुछ वापस नहीं लेंगे, वापस कैसे ले लेंगे, उसमें वापस थोड़ी ना कुछ लेना, तो सॉफ्टवेयर ऑफ कर दो डब्बा हो जाएगा, है ना, उसमें तो कुछ नहीं करना है, बस लैपटॉप टैबलेट में क्या होता, पूरा तो किस पे बेस्ड होता, सॉफ्टवेयर पे ना उसके। अच्छा है,
लिखी है कि ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करेगा आपकी एक्टिविटीज को,
मतलब मतलब वो प्राइवेसी टाइप का, मतलब मॉनिटर करेगा, अरे नहीं वो तो नहीं हटेगी, अरे वो बेचारे अखिलेश एक बार बांटे तो उनका सब हटा के बीजेपी वाले अपने डल डाल लिए, अरे वो नहीं करेंगे, वो तो साहब। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, मिला है बच्चों को, मिला है, ऐसा नहीं है, तो वही चेक करना था कि मिला कि नहीं, तो एकदम मिला है, अब जिसको नहीं मिला वो अपना तकदीर जाने, उससे कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं सब अच्छे हों, कुछ नसूल भी होते हैं। 50 को मिला, 51 को नहीं मिला, यानी कि इसका मतलब क्या, 50 तो ठीक है तो कोई बात नहीं है, जिनको नहीं मिला है वो खुद खरीद लें तो भी अच्छा लगेगा, तो मगर मिला है, बटा है, ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी मुहिम थी। चलिए हम लोग भूस्वामी पढ़ रहे थे, और चलिए सर कितना बजा अभी,
5?
हाँ रे अभी समय दबा दो और चलो
अब इसके बाद जो है हम सेक्शन जरा पढ़ते चल रहे हैं, आप देख लो नहीं तो जो है हम हटाएं सब।
बस एक मिनट हम लोग देख लें इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ठीक कराएं।
156 है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम सिक्योरिटी,
छोड़ दीजिए सीधे राइट्स पे आ जाइए 165 पे,
सॉरी 159 है लैंड रेवेन्यू पेबल बाय भूमिस्वामी,
161 का मतलब डेथ के बाद डिवॉल्व होना ना, है ना, तो राइट्स डिवॉल्व होते हैं, तो डिवोल्यूशन देखने चल रहे हम लोग कि कैसे थ्रू डेथ के बाद कैसे। तो याद है अपने यहाँ हम लोगों ने 108, 109 और 110, तो यहाँ पे लिखा था कि भाई सेकुलर होगा, थोड़ा सा दिमाग में रिकैप करिए, यहाँ पे लिखा था सेकुलर होगा, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ नहीं होगा, और एक लिस्ट बताई थी मेल के केस में और फीमेल के 110। यहाँ देखें कि अगर किसी भूमिदार की डेथ होती है तो कौन पाएगा, क्या कोई सेकुलर लिस्ट है कि उनको अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ जाना पड़ेगा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के हिसाब से। तो लेट अस एग्जामिन एंड वेरीफाई 164, चलिए बताइए
सेक्शन 164 डिवोल्यूशन। सब्जेक्ट टू हिज पर्सनल लॉ द इंटरेस्ट ऑफ भूमिस्वामी शैल ऑन हिज डेथ पास बाय इनहेरिटेंस सर्वाइवरशिप और बीक्वेस्ट एज द केस में बी,
सीधा लिख दिया सब्जेक्ट टू देयर पर्सनल लॉज। अब ये इनहेरिटेंस से होगा, सक्सेशन से होगा, या बीक्वेस्ट से, वसीयत बनाए तो वसीयत से जाएगा, यानी किसको प्रिवेल करा दिया यहाँ पर, तो यानी कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गो थ्रू योर पर्सनल लॉ, आप हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम है तो जो भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से जिनको जिनको मिलना है वही पाएंगे, अलग से कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है। यानी लैंड लॉ के मामले में मध्य प्रदेश में पर्सनल लॉ प्रिवेल करती है, और उत्तर प्रदेश में हमारा UPRC प्रिवेल करता है, ना कि पर्सनल लॉ। सबको याद रहेगा ये चीज, ठीक है 164 हो गया, और अगर आप वसीयत बना लिए तो वसीयत भी अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ ही चलनी है। क्यों लिख दिया है अकॉर्डिंग सब्जेक्टेड टू पर्सनल लॉ, क्योंकि मुस्लिम्स वसीयत बनाते हैं तो 1/3 ही तो बिक्वेटेबल होता है, याद है, हिंदू पूरी अपनी प्रॉपर्टी वसीयत से किसी और को दे सकता है, मगर मुस्लिम्स के लिए क्या कंडीशंस हैं, ओनली 1/3 बिक्वेटेबल, और वो भी अपने एयर्स को नहीं, स्ट्रेंजर को देंगे। तो ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े तो पढ़ा देंगे हम, कोई टेंशन नहीं, इसीलिए लिखा सब्जेक्टेड टू पर्सनल लॉ, ठीक है। और चलिए
सेक्शन 165 राइट्स ऑफ ट्रांसफर।
राइट ऑफ ट्रांसफर सबसे भयंकर, मुझे लगता पूरी किताब भर का नोट्स होगा इसमें, बहुत बड़ा होगा। राइट ऑफ ट्रांसफर अपने अभी था, राइट ऑफ ट्रांसफर था, उस पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, करीब 6 या 7 रिस्ट्रिक्शन थे, नो मॉर्गेज, नो लेटिंग, और बाद में खैर लेटिंग वाला हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ कर दिया, फिर एक होल्डिंग से ज़्यादा ना हो जाए एक्सेस हो जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट कर जाएगी, SC ST को देगा, ST को देगा, यहाँ पे SC ST की जगह अब ओरिजिनल ट्राइब आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा वह शब्द अब ओरिजिनल ट्राइब्स, तो वो अपने में ही कर सकते हैं, अगर किसी और को देंगे तो अमान्य हो जाता है, तो यही इसमें है। मगर यहाँ पर लेटिंग शुरू से अलाउड था तो कोई टेंशन ही नहीं था, मध्य प्रदेश में लेटिंग अलाउड था हमने पहले भी बताया है, तो वो उस तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस होल्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक अमाउंट से ज़्यादा ना हो जाए, तो वो हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए 165 सबसेक्शन 1
सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन प्रोविजंस ऑफ proviso to subsection 3 of section 158 and provisions of section 168, a Bhumiswami may transfer any interest in his land, subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1A. No mortgage of any land by a Bhumiswami shall thereafter be valid unless at least 5 acres of irrigated or 10 acres of unirrigated land is left with him free from any encumbrance or charge.
देखिए पहला restriction लगाया कि mortgage आप कर सकते हैं, transferable right और transfer में सब आता ना, TPA पढ़े होंगे, जब हम शब्द transfer कहा करें तो ट्रांसफर में सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, ये सब किसका पार्ट है? ट्रांसफर का ही है। तो यहां कह रहा, पहले तो कह दिया ट्रांसफरेबल राइट है, फिर कहा रिस्ट्रिक्शन लगाया, कहा कि आप मॉर्गेज तो कर सकते हैं मगर वो लैंड जो 5 एकड़ अगर इरिगेटेड है और 10 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड के ऊपर वाली मॉर्गेज करोगे, यानी इतना तो आपके पास रहना ही, इसके ऊपर की लैंड आप मॉर्गेज कर सकते हो। तो 5 एकड़ इरिगेटेड एंड 10 एकड़ इन केस ऑफ अन इरिगेटेड लैंड, ठीक है। और चलिए
बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, नो यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड बाय अ भूमिस्वामी शैल देयर आफ्टर बी वैलिड if it is for a period exceeding 6 years and unless it is a condition of the mortgage that on the expiry of the period mentioned in the mortgage deed the mortgage shall be deemed without any payment whatsoever by the Bhumiswami to have been redeemed in full and the mortgagee shall forthwith re-deliver possession of the mortgage land to the Bhumiswami.
6 years keh raha hai कि यूजुफ्रक्चरी अगर मॉर्गेज आप कर रहे हैं, यूजुफ्रक्चरी में आप अपनी दे देते हैं ना पजेशन, हम लोगों ने पढ़ा था यूपी में आप कोई भी ऐसा मॉर्गेज नहीं करोगे जिसमें पजेशन दे दिया जाए, अगर करोगे तो सेल हो जाएगा ना, याद है सबको, मेरे ख्याल से वही 91 और 93 था, देखिएगा क्योंकि मुझे भी अब भूलेगा जल्दी, मैं हटाऊंगा उसको सॉफ्टवेयर से अपने, तो अभी बस इसलिए रिटेन किए। देखिए दिमाग, आप सबको बता रहे हैं, दिमाग एक ऐसी चीज है जो आप खुद कंट्रोल करते हैं, यू कैन बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड प्रोवाइडेड यू नो द टेक्निक। अभी आवाज आएगी, सर टेक्निक बता दीजिए, अगर वो आती तो हम यहां बैठते नहीं, हम भी कंट्रोल करके सब काम करते, एक सृष्टि बना देते अगर दिमाग को कंट्रोल करना आता, अपने आप भागता दिमाग, पढ़ा यहां रहे तेंदुए दिमाग जा रहा है, वो अगर उसको मैनेज कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, और मैनेजमेंट का तो एक ही ढंग है लोग बताते हैं, कंसंट्रेशन एंड दैट इज योग, योग अगर आपको आ जाए, योग का मतलब एडिशन, जोड़ना, जहां दिमाग को जोड़ना चाहिए वहीं पे जोड़ने की अगर टेक्टिस आ जाए तो यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, आप एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। बस क्या आ जाए आपको, गौतम बुद्ध हैज यूज्ड 0.3 something यानी 4% का दिमाग यूज किया था, सबसे ज्यादा उन्हीं का है रिकॉर्ड, और वो आज वो लॉर्ड क्या बन गए हैं, बुद्धा। हम लोग तो हमको लगता पूरा ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अगले बार यूज होगा, हाँ नहीं यूज नहीं करने दे, खर्च हो जाएगा बेटा, और कई लोग के तो कहते हैं डंग भरा होता है ना, तो यूज मत करो, पर जितना यूज करो उतना सॉलिड वे में यूज करिए। तो चलिए हम लोग दिमाग को अपने फ्रेश रखते हुए, इंजॉय करते हुए इजी वे में पढ़ते हैं, और हम लोग जान रहे हैं कि पजेसरी मॉर्गेज किया जा सकता है, बस किस लैंड का, 5 हेक्टेयर इरिगेटेड और 10 हेक्टेयर के एक्सेस वाली, मगर उसमें भी यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, यूजुफ्रक्चरी में आप लोन लेते हैं और अपना दे देते हैं जमीन कि भैया यूज करो, इससे प्रोसेस से अपना प्रोसीड से बेनिफिट से अपनी जो हमने तुमसे कर्जा लिया है जो वो लिए डेट उसको रिकवर कर लो फिर हमको वापस कर देना, मगर यहाँ यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज की मैक्सिमम लिमिट कितनी दी है, 6 ईयर, उसके बाद कंपल्सरी रिडम्पशन हो जाए, फिर से आप दीजिए मगर 6 साल बाद वो रिडीम हो जाएगा, तो वही टिक कर लीजिए। और चलिए
सी, If any mortgagee in possession of the land mortgage does not hand over possession of land after the expiry of the period of the mortgage or 6 years, whichever expires first, the mortgagee shall be liable to ejectment by the order of the tehsildar as trespasser, and the mortgager shall be placed in possession of the land by the tehsildar.
Clear? ठीक है, 6 साल से ज़्यादा का अगर आप किसी को देंगे, तो तहसीलदार उसको क्या डिक्लेयर कर देगा मार्गेजी को? ट्रेसपासर, और रिजेक्ट कर देगा. तो ठीक है, ये कोई खास वो नई चीज तो नहीं थी. और चलिए,
प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड हेल्ड बाय अ भूमि स्वामी फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस. थर्ड, वेयर अ भूमि स्वामी इफेक्ट्स अ मॉर्गेज अदर देन अ यूजफ्रक्चरी मॉर्गेज और ऑफ हिज लैंड pursuance of the provisions of subsection 2, then notwithstanding anything contained in the mortgage deed, the total amount of interest accruing under the mortgage shall not exceed half the sum of the principal amount advanced by the mortgagee.
ठीक है, वो सब तो restriction लगाया है कि principal amount से ज़्यादा ज़्यादा interest कितना ले सकते हैं आप? Half of the. अगर 1 लाख की ज़मीन है तो ज़्यादा ज़्यादा कितना interest लेंगे? अगर 1 लाख रुपया लिया गया कर्ज, तो इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं ज्यादा था? 50,000. बस ठीक है, इसको बहुत नहीं जानने की जरूरत है. फोर,
नॉट विदस्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, नो भूमि स्वामी शैल हैव द राइट टू ट्रांसफर एनी लैंड ए इन फेवर ऑफ एनी पर्सन हु शैल एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बिकम इंटाइटल्ड टू लैंड which together with the land if any held by himself or by his family will in the aggregate exceed सच सीलिंग लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड.
अब बेटा ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप सर्च कर लीजिएगा, समय है आप लोग पास आराम से, कि 165 सब सेक्शन 4 में एक्सेस लिमिट क्या है. कह रहा है हम लोग के यहाँ तो था ना, कितना था, 12.5 एकड़ या हेक्टेयर का कुछ था, 5 पॉइंट समथिंग ना था. बहुत बढ़िया, है ना, वहाँ था. यहाँ पे बेटा नहीं लिखा, यहाँ कह रहा सीलिंग लिमिट जैसा सीलिंग एक्ट प्रोवाइड करता होगा, तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है. तो कह रहा है ट्रांसफर पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगाया, एक तो मार्गेज पे लगा दिया कि भाई आप 5 एकड़ या 10 एकड़ के ऊपर ही आप मार्गेज करोगे, और वो भी 6 साल से ज्यादा का पजेसरी मार्गेज नहीं दोगे. फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे कहा कि भाई ट्रांसफर तो करोगे, बट एज अ रिजल्ट ट्रांसफरी और हिज फैमिली शुड नॉट एक्सीड द लिमिट एज प्रिस्क्राइब, और अगर एक्सीड कर जाओगे तो नीचे कॉन्सिक्वेंसेज दिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट में चली जाएगी, नीचे कॉन्सिक्वेंसेज है 168-169 अभी पढ़ाएंगे आपको. तो यहाँ 4 को टिक करना, किस सेक्शन में इसका कॉन्सिक्वेंसेज है?
166
देखिए, सब कोई देखिए, अगर किसी में कहीं वो नीचे लिखा हो कोई लिमिट विमिट अगर आप में ना नोटिफिकेशन करके, तो जरूर बताइए. 166 में देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखें, कि अगर हमने जाली दिया और मान लीजिए 12.5 यही अपने ही वाला करें, एक्सेस वाली लैंड हमारे यहाँ किसको वेस्ट हो जा रही थी? स्टेट. यहाँ देखें क्या है इस एक्सेस वाली 166.
फॉर फीचर इन केसेस ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स 166 Subsection 1. If a transfer of land is made in contravention of the provisions of Clause A of Subsection 4 of Section 165, so much of the land as in excess of the prescribed ceiling limit with the transferee shall, after its selection by the transferee within the prescribed period and demarcation by a subdivisional officer in accordance with such rules as may be made in that behalf, stand forfeited to the state government.
वही तो बता रहा है ना कि कहाँ चली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में फोरफिट हो जाएगी, डिमार्केट कर दी जाएगी, और इलेक्शन कराया जाएगा उसी ट्रांसफरी से, तुम भाई इलेक्ट करो कौन सा वाला स्टेट गवर्नमेंट में एक्सेस जाए, और अगर आप इलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर स्टेट के हिसाब से और इलेक्ट कर लीजिए, तो वही चली जाएगी. तो कुल मिलाकर सब सेक्शन 4 कहता है अगर एक्सेस हो गई सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट क्या है ये आप सब देखिएगा, और अगर पता चले तो मुझे आफ्टर विंटर वेकेशन या टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा. हाँ, और चलिए,
प्रोवाइडेड दैट सब सेक्शन 1, अरे सॉरी
ये छोड़ दो, फिर वहीं आ जाओ,
4 पे ही आ जाओ.
4
पे ही चल,
अच्छा 4 पे ही, ठीक है.
आप लोग फिर से आ जाइए 4 पे,
165 का सबसेक्शन 4 पे,
बी ओमिटेड है। फिर प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई ए फर्स्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस और अ ट्रांसफर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस और अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज। सेकंड, इन द केस ऑफ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस और अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज सब्जेक्ट हाउएवर टू द कंडीशन दैट नो मॉर्गेज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस शैल अथोराइज सेल फॉर रिकवरी ऑफ एन एडवांस और इन कंट्रावेंशन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 147।
तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि ये जो एक्सेस वाला क्राइटेरिया है ये इंडस्ट्रियल पर्पज पे अप्लाई नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं होगा, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस पे भी अप्लाई, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज पे बड़ी जमीन हो सकती है, जब आप डाइवर्ट कर लेंगे कहीं होगा देखिएगा वही आगे भी हो सकता मिल जाए, तो अगर वो सब आपने कर दिया है तब ये जो एक्सेस वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और चलिए तब हाँ इंडस्ट्रियल पर्पस से कर दीजिए या एग्रीकल्चरल सोसाइटी कर दीजिए, रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स को करिए तो चाहे जितना कर दीजिए वो ट्रांसफर हो जाएगा। केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्राइवेट भूमिधर के लिए लिमिटेशन लगाया गया है, इन लोगों के लिए नहीं। हाँ बी देखिए,
इन द केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लैंड हेल्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लैंड अंडर सब सेक्शन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज वन ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोविजो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस द लैंड शैल बी डाइवर्टेड अंडर सेक्शन 59 प्रायर टू सच ट्रांसफर।
तो आप जानते हैं ना पहले क्या होता है, डिक्लेरेशन याद है सेक्शन 80 ऑफ द इनका पता नहीं 59 है क्या है, याद है हमने कहा था अगर एग्रीकल्चरल पर्पज के अलावा आप कोई लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं तो पहले क्या करा लीजिए, डिक्लेरेशन। यहाँ उसी का नाम क्या है, डाइवर्ट करा, कुछ क्या बोला डाइवर्जन। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि शर्त यह है कि आप अगर एग्री इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो पहले डिक्लेरेशन करा लो, उसका लैंड यूज चेंज करा लो, एग्रीकल्चरल लैंड बिकम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, एसडीओ से आप अप्लाई करा के हटवा दीजिए। सेक्शन 59 बोल रहा है, 59 पे तो नहीं होगा डाइवर्ट,
नहीं 59 पे नहीं था, पता नहीं
वो आप लोगों में भी 59 लिखा है सब्जेक्टेड टू सेक्शन 59। चलिए उसको ढूंढ देंगे। और चलिए
एक्सप्लेनेशन
छोड़ दो,
सब सेक्शन 5।
अब 5 पे आई, 5वां फिर रिस्ट्रिक्शन देखें क्या बवाला है।
Notwithstanding anything to the contrary in any other enactment for the time being in force, no land of a Bhumi Swami shall in execution of a decree or order of a court be sold to any person who as a result of such sale shall become entitled to land which together with the land if any held by himself or by the family will in the aggregate exceed such ceiling limit as may be prescribed।
अगर अटैचमेंट करके भी सेल कर, अगर आप कोई कोर्ट सेल से आप ले रहे हैं तो भी वही लिमिट है, आप अगर कोर्ट सेल यानी अटैचमेंट करके डिक्री वगैरह से भी आप ले रहे हैं तो लिमिट वही है, अगर एक्सेस हो जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। बस छोड़ दीजिए और चलिए 6
प्रोवाइडेड दैट पढ़ दें इसका,
प्रोवाइडेड है ना, बहुत हो गया। हाँ
एक्सप्लेनेशन छोड़ दे,
छोड़ दीजिए एकदम।
फिर है सब सेक्शन 6, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 The right of Bhumi Swami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe by a state government,
aboriginal tribe के लिए restriction आ गया,
by a notification in that behalf for the whole or part of the area to which this code applies shall 1 in such areas as are predominantly inhabited by aboriginal tribes and from such date as the state government may by notification specify not be transferred nor it shall be transferable either by way of sale or otherwise or as a consequence of transaction of loan to a person not belonging to such tribe in the area specified in the notification. Second, in areas other than those specified in the notification under clause 1 not to be transferred or to be transferable either by way of sale or otherwise or as a consequence of transaction of loan to a person not belonging to such tribe without the permission of a revenue officer not below the rank of collector.
अच्छा ध्यान रखिए, कह रहा है scheduled area में जहाँ tribes रहते हैं वहाँ तो tribe non tribe को transfer नहीं करेगा, किसी भी तरह का sale invalid होगा. और जो नॉन शेड्यूल एरिया हैं, जो ट्राइबल एरियाज नहीं हैं, वहाँ पर अगर अब ओरिजिनल ट्राइब अगर किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो किससे प्रायर परमिशन ले, कलेक्टर से. अपने अभी तो यही था कि प्रायर, तो यहाँ ध्यान रखिए. अच्छा अगर कर ही दिया एक ट्राइबल ने, अब ओरिजिनल ट्राइबल ने, तो उसका देखिए कॉन्सिक्वेंस 170 किस में है, देखिए
सेक्शन 170
देखिए. अगर एक शेड्यूल ट्राइब, वहाँ का शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं एब ओरिजिनल ट्राइब, एब ओरिजिनल ट्राइब ने किसी नॉन एब ओरिजिनल ट्राइब को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या उस बेचारे ट्राइबल को तो नॉलेज होगी नहीं, तो क्या उसकी ज़मीन आप छीन लेंगे? यहाँ पे तो यही था ना कॉन्सिक्वेंस, स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो जाएगी. यहाँ नहीं, यहाँ क्या करते हैं कि फिर से उसको वापस दिलवा देंगे, ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा, वाइड होगा, और प्रॉपर्टी जो लैंड ऑफ फिर से रिवर्ट होके ट्रांसफरर के पास चली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी. देखिए
सेक्शन 170 अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 165 सिर्फ सेक्शन 1 वेयर पोजीशन इज ट्रांसफर्ड बाय अ भूमिस्वामी इन परसुएंस ऑफ अ ट्रांसफर विच इज इन कंट्रावेंशन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 165 एनी पर्सन हु इफ ही सर्वाइव्ड the bhumi swami without nearer heirs would inherit the holding may first till the 31st December 1978 in the case of transfer of possession prior to the 1st July 1976 and second within 12 years of such transfer of possession in subsequent cases. ये
देखो क्या है 170 ये होगा.
Certain transfer to be set aside.
हाँ ये देखिए.
Section 170 capital A.
B में.
Reversion of land of members of aboriginal tribe हाँ. which was transferred by fraud.
अच्छा A पहले देख लें फिर B दोनों में आ जाएगा. हाँ.
170 capital A certain transfer to be set aside subsection 1 notwithstanding anything contained in limitation act 1963. The sub-divisional officer may, on his own motion or on an application made by a transfer of agricultural land belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under subsection 6 of section 165 on or before the 31st December 1978 inquire into a transfer effected by way of sale or in pursuance of a decree of a court of such land to a person not belonging to such tribe or transfer effected by way of accrual of right of occupancy tenant under section 169 or of a bhumi swami under section 2A of section 190 of at any time during the period commencing on the 2nd October 1959 and ending on the date of commencement of Madhya Pradesh Land Revenue Code 3rd Amendment Act 1970.
छोड़ो ये तो खुद ही बवाल भी देखिए. हाँ ये तो बहुत खतरनाक, एक से एक इतना कठिन. बस इतना कंफर्म हो गया कि 2 अक्टूबर कोई डेट है ना, इतना यहाँ आज जाके वो आया, सुकून मिला. हाँ एबोरिजिनल बी वाला देखिए कैपिटल
170 कैपिटल बी रिवर्जन ऑफ लैंड ऑफ मेंबर्स ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब विच वाज ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड सब सेक्शन.
समझ लीजिए अगर फ्रॉड से किसी एबोरिजिनल ट्राइब से ट्रांसफर कराए हैं तो वो फिर उसको वापस करा दी जाती है, रिवर्ट कराई जाती है. ठीक है तो बाकी अभी देख लेंगे. आप फिर से आइए, 6 पे थे हम लोग, 165 6 पे थे ना एबोरिजिनल वाला. 7 देखिए
लंबा है, 6 ए है, 6
वो चलो हो गया, इतना नहीं जानना.
7 है, ई है, ई है, फिर एफ है, फिर 7 है.
हाँ 7 आई है, थोड़ा थोड़ा पहले जाने फिर
सब सेक्शन 7 notwithstanding anything contained in subsection 1 or in any other law for the time being in force. A where the area of land comprised in a holding, or if there be more than one holding, the aggregate area of all holdings of a Bhumiswami is in excess of 5 acres of irrigated or 10 acres of unirrigated land, then only so much area of land in his holding or holdings shall be liable to attachment or sale in execution of any decree or order as in excess of 5 acres of irrigated or 10 acres of unirrigated land.
यही तो बता रहे थे ना, यहाँ आके मिला जो हम कहने रहे थे कि लैंड रेवेन्यू के उसमें भी 5 एकड़ के ऊपर ही वाली अटैच होके सेल होगी, मार्जिनल फार्मर्स की होल्डिंग्स अटैच नहीं होती. तो यहाँ कह रहा है 5 एंड 10, याद रखिए 5 10 5 इरिगेटेड और 10 इन केस ऑफ नॉन इरिगेटेड. इसके ऊपर वाली ही लैंड अटैचमेंट होगी सेल, जो अभी आपने 147 या किस में पढ़ा था, प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू किस में था मेरे ख्याल 147 है ना. तो वहां पे जब पढ़िएगा तो वहां जहां अटैचमेंट एंड सेल लिखा है वहां 165 सब क्लॉज 7 जरूर याद रखिएगा, वहां से प्लस कर लीजिएगा. 147 में जरूर पढ़िएगा कि इस लैंड के ऊपर की ही अटैचमेंट एंड सेल होगी, उसके नीचे की नहीं. चलिए और चलिए एक
बी, इसी का बी कहता है सब सेक्शन 7 का बी पार्ट. नो लैंड कंप्राइज इन अ होल्डिंग ऑफ अ भूमिस्वामी बिलोंगिंग टू अ ट्राइब विच हैज बीन डिक्लेयर टू बी एन एबोरिजिनल ट्राइब अंडर सब सेक्शन 6 शैल बी लायबल टू बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर. सी नो रिसीवर शैल बी अपॉइंटेड,
यानी एबोरिजिनल ट्राइब की लैंड रेवेन्यू के चक्कर में अटैच कभी भी किसी मामले में अटैच नहीं होगी. ठीक है, रिसीवर.
सी नो रिसीवर शैल बी अपॉइंटेड टू मैनेज द लैंड ऑफ अ भूमिस्वामी अंडर सेक्शन 51 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, नॉर शैल एनी सच लैंड वेस्ट इन द कोर्ट और एनी रिसीवर अंडर द प्रोविंशियल.
एट बताइए,
फिर 7A, 7B, फिर 8
है. एट बताइए. हाँ,
अरे बाबा रे,
अभी और बवाल है. कोई नहीं,
नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ भूमिस्वामी फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी राइट इन हिज लैंड टू सिक्योर पेमेंट ऑफ और शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सेल सच राइट फॉर द रिकवरी ऑफ एन एडवांस मेड टू हिम अंडर द लैंड इम्प्रूवमेंट.
ये भी छोड़ दो, ये मत, एक मत पढ़िए.
फिर नाइन्थ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल prevent Bhumiswami from transferring any right in his land by way of mortgage to secure payment of an advance made to him by cooperative society.
ये भी छोड़ दीजिए, ये बेकार है.
9A है, 9B है,
ये भी छोड़िए.
10 है, notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act. No officer empowered to register documents thereunder shall admit to registration any document which purports to contravene the provisions.
ये भी बेकार है.
11 Nothing in this section shall A. invalidate any transfer which was validly made or B. validate any transfer which was invalidly made before the coming into force of the court.
ठीक है,
हो गया.
अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान से 165 में, वन तो आपका ट्रांसफर का राइट था, सेकेंड मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट हुए थे ना, मार्गेज वाला था ना, सेकेंड वाला मार्गेज से रिलेटेड था, थर्ड वाला एक्सेस वाला से होगा. ठीक है, फोर्थ वाला, और उसके बाद एक था एब ओरिजिनल, मेरे ख्याल से सिक्स वाला है. तो इसमें तीन या चार याद रखने, पहला कि भाई हमारा एक्सेस ना हो जाए, और दूसरा एब ओरिजिनल ट्राइब मार्गेज, बस इससे ज्यादा इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं था. बाकी 166 में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था मार्गेज वाला. 167 बताइए,
हो गया
कितना बजा,
625.
तो अंकित सर कह रहे हैं कि अब ओवर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा इनको, आप लोग को भी ऐसा ही शायद लग रहा होगा. तो ऐसा करेंगे, एक दिन का मुझे लगता है कार्यक्रम बाकी, क्योंकि वाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, सर्विस लैंड, और भी दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है आती ही आती, बल्कि हम देख रहे हैं एमपी में बैक साइड से ज्यादा पूछा जाता है. तो एक दिन का इसके साथ न्याय करने की और जरूरत है. तो 4 तारीख को, आप 4 तारीख को ना, फोर्थ ऑफ द जनवरी हम लोग इसका रिमेनिंग पोर्शन और इसके साथ वही इसके बाद बैक टू बैक कौन सा स्टार्ट करेंगे, एकोमोडेशन ना, तो एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट को बोलते हैं एमपी, वो शायद एकोमोडेशन एक्ट ना, वो पढ़ेंगे। जब ये सब एंड हो जाएगा तो उसके बाद आईपीसी यानी 10 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो आज के बाद सारी क्लास हमारी फॉर्मली क्लोज्ड हो रही है विंटर वेकेशंस के लिए। अब हम लोग मिलेंगे सीधे 4 जनवरी को, मेरे ख्याल से ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मिलेंगे और उसके बाद लाइन टू लाइन अपना जो भी पहले ये एंड करेंगे फिर आईपीसी पे आएंगे। तो चलिए 4th ऑफ द जनवरी मिलते हैं और इन एडवांस आप सबको
हैप्पी न्यू ईयर,
हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, जो कि एक फॉर्मेलिटी भी है। आप लोग कह सकते हैं व्हाट इज हैप्पी, तो हैप्पी रहना चाहिए है ना। तो हम लोग इन एडवांस दे रहे हैं और फिर जब मुलाकात होगी तो फिर बातचीत होगी इसी को लेके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को अपने ड्यू टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।